నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సరస్వతిదేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ శ్రీమద్ భాగవతం ఛఠా స్కంద్ అధ్యాయ ఏక్ శ్లోక సంఖ్య 64 కి ఆవృత్తి కరంగే తామేవ తోషయామాస పిత్రేణార్థేన యావతా గ్రామే మనోరమే కామే ప్రసీదేత యథా తథా తామేవ తోషయామాస పిత్రేణార్థేన యావతా గ్రామే మనోరమే కామే ప్రసీదేత యథా తథా తామేవ తోషయామాస పిత్రేణార్థేన యావతా గ్రామే మనోరమే కామే ప్రసీదేత యథా తథా మాతాజీ శబ్దార్థ తాం కుస్కో వేశ్యాకో ఏవ నిస్సందేహ తోషయామ్ ఆస ఉస్నే ప్రసన్న కర్నే కా ప్రయాస్ కియా పిత్రేణ అప్నే పితా కీ గాఢీ కమాయీ సే ప్రాప్త అర్థేన ధన్ సే యావతా యథా సంభవ గ్రామ్యహ భౌతిక మనః రమే ఉస్కె మన్ కో सुहावना लगने वाले काम है इंद्रिय भोग के लिए उपहारों द्वारा प्रसिद्धेत उसे तुष्ट करना होगा यथा जिससे तथा उस तरह से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद इस तरह अजामिल अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त जो भी धन था उसे अपने विविध उपहारों द्वारा उस वेश्या को तुष्ट करने में खर्च कर दिया, जिससे वह उससे प्रसन्न बनी रहे। उसने उस वेश्या को तुष्ट करने के लिए अपने सारे ब्राह्मण कर्म भी छोड़ दिए। तात्पर्य, विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक शुद्ध व्यक्ति भी वेश्या द्वारा आकृष्ट हो जाने पर उत्तराधिकार में प्राप्त सारा धन खर्च कर सकता है। वेश्या का आखेट इतना निंदनीय है कि वेश्या के साथ संभोग की इच्छा से, देखो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, केवल इच्छा करने से, वेश्या के साथ संभोग की इच्छा से व्यक्ति अपना चरित्र नष्ट कर सकता है, अपना उच्च पद को खो सकता है और अपना सारा धन गंवा सकता है। इसलिए अवैध यौन का बुरी तरह से निषेध है। मनुष्य को अपनी विवाहिता पत्नी से तुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि थोड़े से विचलन से गजब हो सकता है। एक कृष्ण भावना भावित गृहस्थ को इसका सदैव स्मरण रखना चाहिए। उसे एक पत्नी से सदैव तुष्ट रहना चाहिए और केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके शांत रहना चाहिए, अन्यथा किसी भी क्षण वह अपने उत्तम पद से नीचे गिर सकता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण अजामिल है। 65वां श्लोक भी ले लेते हैं, छोटा ही श्लोक है। आप मत बोलिएगा, मैं बोलूंगा। विप्राम स्वभार्याम मैं प्रौढ़ाम कुले महति लंबिताम विससर्जा चिरात्म पाप स्वरिण्या पापांग विद्धवी। अनुवाद, चूंकि उसकी बुद्धि वेश्या के कामपूर्ण चितवन से बिंध चुकी थी, अतः शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। यहाँ पर शब्द है स्वरिण्या पांग विद्धि भी। उसने अपनी उस अति सुंदरी तरुण पत्नी तक को साथ छोड़ दिया, जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति अपने पिता का उत्तराधिकार पाने का प्राप्त है, पात्र है, और अजामिल ने भी अपने पिता का धन उत्तराधिकार में पाया था, किंतु उसने इस धन से क्या किया? उसने यह धन कृष्ण की सेवा में न लगाकर वेश्या की सेवा में लगा दिया, अतः उसकी निंदा हुई और वह यमराज द्वारा दंडनीय हुआ। यह सब कैसे हुआ? वह एक वेश्या की घातक कामयुक्त चितवन का शिकार हो गया। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया तैस्तम चक्षुम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपे कदामय्यम तदाति स्वपदांतिकम। वंदेहम श्री गुरुः श्रीयुत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवाश्च श्री रूपं साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप अजामिल का प्रकरण सुन रहे हैं। आज के श्लोक में अजामिल वेश्या को तोषयाम आस है, तोष माने तुष्ट, प्रसन्न करने लगा। किससे प्रसन्न करने लगा? बोले पितृण अर्थेन, पिता से जो धन प्राप्त हुआ था उसको, उससे वह उसको उसके ऊपर पूरा खर्च करने लग गया। क्या चीज में खर्च करता था? बोले ग्राम्य है, मनोरमे है, कामे है। ग्राम्य माने विषय भोग की वस्तुएं ला करके उसको वो देने लगा, जैसे कपड़ा, गहना, फ्रिज या ब्यूटी पार्लर की वस्तुएं, ये सब उसको ला करके वह देने लगा। इसको बोलते हैं ग्राम्य है, मनोरमे, कामे, काम वासना को तुष्ट करे, ऐसी वस्तुएं वह लाके देने लगा। तो प्रसीदेत, उसको वह प्रसन्न करने के लिए लगा हुआ था। ये चीजें लाके क्यों दे रहा था? ताकि वह वेश्या उससे प्रसन्न रहे। तो उपाध्याय यहां कहते हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक शुद्ध व्यक्ति भी वेश्या द्वारा आकृष्ट हो जाता है और उसमें अपने पिता से उत्तराधिकार में, इसको दाय भाग कहते हैं, उत्तराधिकार में जो भी धन प्राप्त होता है वह उस वेश्या पर खर्च कर देता है। इसके एक उदाहरण हमारे बिल्व मंगल ठाकुर हैं, जिसकी टाइम मिला तो हम आपके उनके बारे में बताएंगे। वे भी इसी प्रकार वेश्या से आकृष्ट होकर के अपने पत्नी को त्याग कर दिए थे। तो वेश्या का आखेट, आखेट मतलब शिकार, इतना निंदनीय है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेश्या के साथ संभोग की इच्छा से, संभोग किया नहीं है अभी, संभोग की इच्छा से व्यक्ति, देखिए क्या क्या चीज खो सकता है, वह अपना चरित्र नष्ट कर सकता है। ये बड़ा अजामिल अच्छा चरित्रवान ब्राह्मण था, आगे के श्लोक में बताएंगे हम आपको, लेकिन फिर भी वेश्या के संगति के कारण कि वेश्या से मैं समागम करूं, इसके कारण उसने अपना चरित्र गंवा दिया, अपना उच्च पद, यानी ब्राह्मण था वह, अब वह शूद्र हो गया और सारा धन जो प्राप्त किया था पिता से वह गंवा दिया। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अवैध यौन का बुरी तरह से निषेध है। देखिए वेश्या मनुष्य के यौवन को और धन को समाप्त कर देती है। वेश्यागमन तो पाप है ही, लेकिन उससे भी भयंकर पाप है परस्त्री गमन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, चार हमारे जो नोज हैं, इलिसिट सेक्स, ये वेश्यागमन से भी ज्यादा भयंकर पाप है। ऐसे आदमी का जो परस्त्री गमन करता है उसकी कभी भी सदगति नहीं हो सकती है। वेश्यागमन वाले की फिर भी सदगति हो जाएगी, जैसे अजामिल की हुई, विलमंग ठाकुर की हुई, लेकिन जो परस्त्री गमन करता है उसकी कभी भी सदगति नहीं हो सकती है। मनुष्य को तो उपाध जी कहते हैं कि अपनी विवाहिता पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए। विवाहिता पत्नी से भी, देखो आगे के श्लोक में बताएंगे आपको, कंट्रोल्ड सेक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज 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 रोज, तो पादी बिल्कुल ना किए इस बात को, और 50 के बाद बिल्कुल नहीं, स्त्री संग बिल्कुल नहीं 50 के बाद। तो इसी को यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी विवाहिता पत्नी से उसको संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी मन इधर उधर गया तो बड़ा गजब ढा सकता है, ये हमारा भक्ति हमारी नष्ट हो सकती है। तो एक कृष्ण भावना भावित गृहस्थ जो भक्ति में लगा हुआ है उसको सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि मैं केवल मेरी पत्नी से ही संतुष्ट रहूं। उसे एकमात्र अपनी पत्नी से ही सदैव तुष्ट रहना चाहिए, उसी से संतोष करना चाहिए। जो भी जैसा मिला, चाहे पत्नी को जैसा पति मिला या पति को जैसी पत्नी मिली, जैसा भी हो, उससे उसको संतोष करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके अपने को शांत रखना चाहिए। अन्यथा प्रभुपाद जी वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी क्षण अपने उत्तम पद से नीचे गिर सकता है। हम कभी कभी सोचते हैं हम लोग, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूं, मैं कैसे नीचे गिर सकता हूं, लेकिन मन में यदि थोड़ा भी विकार आ गया तो वह आपके पतन का कारण हो गया। और इसने तो मन में विकार के अलावा इसने तो पूरा सीन देखा है, उसकी वापिस आवृत्ति हम करेंगे उन सीनों की। और सोबरी ऋषि भी ऐसे ही हुए थे, सोबरी मुनि, ये केवल मछली के साथ जल में उन्होंने संभोग करते हुए देख लिया था और वे पतित हो गए। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है हम भक्तों के लिए। वह ब्राह्मण स्वभार्या, उसके ब्याह हो गया था और उसकी पत्नी जो थी वो ब्राह्मणी थी, विप्राम, और ब्राह्मणी होकर के अप्रौढ़ाम नवयुक्ति थी, वह कोई ज्यादा उम्र की नहीं थी, बड़ी सुंदर थी, वह कुले अच्छे कुल वाली थी, महती, महान कुल था उसका, ब्राह्मण कुल था, लंबिताम और विवाहिता स्त्री थी उसकी। लेकिन फिर भी उसको उसने विससर्जा, उसने उसका त्याग कर दिया। चिराग पाप है, उस पापी ने शीघ्र ही जैसे ही उस वेश्या को अपने घर में लाया, अपनी विवाहिता पत्नी को उसने छोड़ दिया। और स्वैरिण्या माने उस वेश्या की अपांग विद्ध भी काम युक्त चितवन से वह उसके पीछे वश में हो गया। वेश्या ने कहा कि देखो, या तो इस घर में यह रहेगी और या इस घर में मैं रहूंगी, तुमको जो चॉइस है तुम्हारे पास। तो इतना कामांध हो चुका था वह अजामिल कि उसने अपनी पत्नी को निकाल दिया, उस वेश्या को उस घर में रखा। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम अजामिल का लेंगे कुछ श्लोकों में। अजामिल कैसा था, 56वां और 57वां श्लोक ये इंडिकेट करता है कि अजामिल में कितना गुण था, कि अयम ही श्रुत संपन्न है, बिल्कुल शास्त्रों का जानकार था, शील, बिल्कुल शीलवान था, चरित्रवान था, वह गुणालय है, गुणों का वह घर था अजामिल, धृत व्रतो, जो व्रत को धारण कर लेता था उसको पूरा करता था, और उसने ब्रह्मचारी था वह, तो ब्रह्मचर्य व्रत का उसने व्रत धारण कर रखा था, मृदु, एकदम कोमल नरम बोलता था वह, और अदांता है, उसके सब बाह्य इंद्रियां उसके वश में थी। वह कभी भी इतना उसने प्रण कर रखा था कि मैं स्त्री तक को देखूंगा नहीं, देखता नहीं था, सत्यवाक, सत्य बोलता था, और मंत्रवित, वह वेदों के श्लोकों का बहुत अच्छा आचरण करता था, शुचि, बड़ा पवित्र था, और गुरु, अतिथि, वृद्ध, इन सब की शुश्रूषु सेवा करता था, और सर्वभूत सुरित साधु, साधु था, सबके प्रति सम्मान करता था, मितवाक, मितवाक का अर्थ है कि वह जगत की चर्चा नहीं करता था, देखो कितना बड़ा गुण था उसके अंदर, अनुसूय कह मैंने कभी भी किसी की निंदा नहीं किया उसने, वह चुगलखोर नहीं था। इस संसार में सभी तर जाते हैं पर चुगलखोर नहीं तरते हैं, इससे बचना चाहिए, मतलब बहुत ऊंचा से गिरा है इसको बोलते हैं चुगलखोर, चकनाचूर हो जाता है यह चुगलखोर। तो दानता है, बाह्य इंद्रियां भी उसके नियंत्रण में थी, कभी भी गलत रूप नहीं देखता था, कभी भी आंखों से देखता नहीं था, और कान से वह और कोई बात सुनता नहीं था, पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में वह अपना धर्म पालन कर रहा था। लेकिन फिर भी देखो कैसे वह पतित हो गया, कि एकदा एक दिन उसके पिताजी ने उसको कहा कि वनम याता है, वन में जाओ और जाकर के और मेरे लिए फल पुष्प यज्ञ करूंगा, और समित कुशा लकड़ियां ये सब तुम लेकर के आओ। तो जब गया वो लेने के लिए तो उसने एक सीन देखा कि एक शूद्र सहबुजिष्या, एक वेश्या के साथ आलिंगन कर रहा है और वे दोनों पीत्वा मधु शराब पिए हुए थे। मदा घूर्णित नेत्रया और उस वेश्या के शराब के कारण आंखें इधर उधर घूम रही थी। तो मत्तया विस्तृत निव्या उस वेश्या को यह भी नहीं ख्याल था कि उसके वस्त्र शिथिल हो रहे हैं और वे नीचे गिर रहे हैं। व्यपेतम निरपत्रपम वो शूद्र और वह वेश्या निरपत्रपम निर्लज्ज थे। क्रीडंतम अनुगायंतम अनुगायंतम का अर्थ यहाँ पे ये लिया गया है कि जैसे उस सीन में पुरुष स्त्री की सुंदरता का वर्णन करता है, तुम बहुत सुंदर हो, स्त्री पुरुष की सुंदरता का वर्णन करते हैं, हाँ तुम बहुत सुंदर हो, इसको यहाँ पे अनुगायंतम वे दोनों आपस में एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। इस श्लोक के प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पुराने युग में ऐसा सीन कभी कभी देखा जाता था क्योंकि ये सतयुग का समय था जब अजामिल का प्रकरण हुआ, लेकिन आज के युग में तो ये बोले सर्वत्र देखा जाता है। आप जहां भी जाएंगे ये सीन, और खास तौर से प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये सीन हमेशा रहता है कि एक स्त्री और पुरुष ड्रिंक्स लिए हुए हैं, आलिंगन में है, किसिंग कर रहे हैं, ये सब बुरे जितने भी सीन है ये सब पब्लिक में देखे जा सकते हैं। पर यदि कृष्ण कृपा से, देखो बिना कृष्ण कृपा के इस तरह के माध्यम में छूट नहीं हो सकती है, बिना कृष्ण कृपा के यदि कृष्ण कृपा से कोई व्यक्ति अपने विधि विधानों में दृढ़ रहता है, मतलब वह निश्चित रूप से 16 माला का जाप कर रहा है और भागवत का श्रवण कर रहा है, तो कृष्ण उसकी रक्षा निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि कौनते ये प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति, ये कौनते हे अर्जुन मेरा भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो जब इस काम लिप्ते न दृष्टवा ऐसा सीन उसने देखा, बाहुना परिरंभितम बाहों से आलिंगन करते हुए, तो जगाम हृत्शयम वशम वह काम के वश में हो गया। सहसे वह विमोहित है, सहसा उसका ज्ञान समाप्त हो गया, विमोहित हो गया वह, उसका स्तंभन संभयन आत्मना मात्मानम, उसने बहुत कोशिश किया कि मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूं, बहुत कोशिश किया उसने, आत्मना माने मन से बुद्धि से सब उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन न शशाक है समाधा तुम, वह अपने को कंट्रोल नहीं कर सका। मनो मदन वेपितम, क्योंकि मदन कामदेव ने उसकी मति को घेर लिया था। ये हम सबके साथ हो सकता है, ये चीज बहुत हमको ध्यान रखने की चीज आवश्यकता है, इसके लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। काम वेदी तुम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक कोई ज्ञान धैर्य उचित शारीरिक मानसिक और बौद्धिक आचरण में अत्यंत प्रबल ना हो, माने उसकी बुद्धि ने कहा कि नहीं नहीं ये तुम गलत काम कर रहा है, उसके मन ने कहा तुम गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वह हो गया, क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि इतनी स्ट्रांग नहीं थी भक्ति में, उसका मन इतना स्ट्रांग नहीं था बुद्धि में, इसलिए वह आकर्षित हो गया उसके प्रति। इसलिए ऐसे सीन को देखते हुए भी उसकी कामेच्छाएं जागृत हो गई और गत स्मृति विचेतन है, उसकी स्मृति समाप्त हो गई कि मैं ब्राह्मण था, और वह मन में अपने ही उस वेश्या का निरंतर चिंतन करने लगा और उसको फिर ले आया अपने घर में। स्वधर्मात्विर राम है, उसने अपने ब्राह्मण धर्मों को सब छोड़ दिया, अब वह ये नहीं करता था, भगवान का भजन नहीं करता था। वास्तविक बात यह है कि वेश्या का शूद्र का दर्शन, वेश्या और शूद्र का जो दर्शन हुआ जिसमें यही उसके निमित्त बन गया। तो ऐसे सीन को हम लोगों को कभी देखना नहीं चाहिए, और यदि देख भी लिया तो ये काम रूपी जो ग्रह है इससे ग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये काम बहुत बड़ा देखो ग्रह है, जिसको ये पकड़ लेता है उसकी बुद्धि चली जाती है, उसका तेज चला जाता है, उसका ज्ञान चला जाता है, इसीलिए इस श्लोक में यहां पर विचेतन विचेतना शब्द आया है। विचेतना मतलब उसकी चेतना खत्म हो गई ऐसा सीन देख करके, पहले जैसा अजामिल अब वह नहीं रहा था पवित्र, वह खत्म हो गया और अपने परिवार की अपने पिता की अपने धर्म की उसको कुछ भी मर्यादा का ख्याल नहीं रहा और वह केवल वेश्या का चिंतन करने लगा। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि हमको किस तरह अपना चरित्र संभाल करके रखना चाहिए और किस तरह बुरी संगत में हमको नहीं पड़ना चाहिए। मेन इसका जो अजामिल पतित हुआ उसका कारण क्या था? बोले संग, उसने वेश्या का संग किया इसलिए ये सब हुआ। इसलिए कपिल भगवान देहूति माता जी को कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम, प्रकर्षेण संगम, क्या है प्रसंग? प्रकर्षेण संगम, ये संग तो है ही जो अजामिल ने किया, बाकी इसके अलावा भी प्रसंगम मतलब है आसक्ति। आसक्ति क्या है? बोले अजरम पाशम, ये अजर पाश है। जर माने क्या होता है? बुढ़ा हो जाना। अजर माने जो कभी बुढ़ा नहीं होता है। जैसे आप लोहे की एक जंजीर लो, उससे किसी को बांध दो, धीरे धीरे वह जर जाएगी, उसको रस्ट लग जाएगी, जंग लग जाएगी, वो बुढ़ा हो जाता है। लेकिन ये आसक्ति ऐसी है कि अजरम, ये कभी बुढ़ी नहीं होती है, वृद्धावस्था में भी काम वासना बनी रहती है, अजरम पाशम है। ये आदमी को बद्ध कर देती है, पाश ऐसा पकड़ के रखती है। कवयो विदुः, बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं। तो पर वही आसक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आसक्ति का त्याग नहीं किया जा सकता है। आसक्ति चाहे वेश्या के प्रति हो, आसक्ति चाहे परस्त्री गमन हो, या आसक्ति चाहे अपनी स्त्री के प्रति हो, या अपने परिवार के प्रति हो, या अपने धन के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, आसक्ति आसक्ति है, उसका परित्याग नहीं किया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए? बोले डाइवर्ट कर दो उस आसक्ति को, कृष्ण में डाइवर्ट कर दो, साधुओं का संग करो। सैव साधुषु कृतो, वही आसक्ति यदि साधुओं में लगा दी जाए, कृष्ण में लगा दी जाए, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसका मोक्ष का द्वार अपावृतम, आवृतम माने बंद, अपावृतम माने खुल गया, खुला हुआ हो जाता है। पर यह होगा कैसे? ये प्रसंगम अजरम ये जाएगा कैसे? बोले मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ती ये दृढ़ाम मत कहते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। कपिल भगवान कहते हैं कि मेरे में जो अनन्य भाव से भक्ति करता है, कैसी भक्ति? बोले दृढ़ाम, भक्ति दृढ़ होनी चाहिए, अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण को पकड़ लिया, अनन्य भाव इसको बोलते हैं, जो कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ लिया, इधर उधर नहीं जाने का, फिर इसको अनन्य भाव कहते हैं। मेरे लिए मत कृते त्यक्त कर्माण, भक्त मेरा कैसा होता है, मेरे लिए अपना काम धंधा भी छोड़ देता है, और त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने स्वजनों को, अपने बंधुओं को, अपने परिवार को भी वह मेरे लिए छोड़ देता है, ऐसा मेरा भक्त होता है। इस प्रकार की जब भक्ति होती है तब वह कहते हैं कि त एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं उनका सब ये संग दोष, ये अजामिल क्यों पतित हुआ, संग दोष, ये संग दोष समाप्त हो जाता है। तो ऐसे साधुओं का तुम संग करो, क्योंकि ऐसे साधु तुम्हारे संग दोष को हर लेंगे। भगवद गीता में भी यही बात कही गई है कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसको भगवान के धाम जाना है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उत्तराधिकारी कौन है? बोले निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष को जिसने जीत लिया है। संग दोष क्या है? यही प्रसंगम अजरम पाशम, यही संग दोष है, आसक्ति, परित्याग। तो इसको जो कर लेते हैं तो फिर वे इस प्रकार के सीन से देख भी लिया होगा तो भी वह विचलित नहीं होते हैं। बोले मेरा भक्त कैसा होता है? नव योगेंद्र एकादश स्कंध में कहते हैं 11:2-55 कि विश्वजति हृदय न यश साक्षात हरि वशा भी हितो प्यघोग नाश है प्रणय रसना घृतांग्री पद्म है स भवती भागवत प्रधान उक्त है। उत्तम भागवत कौन है? बोले उत्तम भागवत वह है, भागवत प्रधान उक्त है, वह है जिसके हृदय को श्री कृष्ण भी कभी नहीं छोड़ पाते हैं, वह भागवत प्रधान। विसृजति हृदय न यश साक्षात, विसृजति माने छोड़ना, यश साक्षात जिसके हृदय को कृष्ण भी नहीं छोड़ना चाहते। कृष्ण बोलते हैं कि नहीं मैं तो इसी भक्त के हृदय में रहूंगा, नहीं छोड़ते हैं। साक्षात श्री कृष्ण महाभागवत के हृदय को नहीं छोड़ पाते हैं, वह है परम भागवत। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में तो ऐसे बार बार सीन होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है आजकल तो इंडिया में भी होने लग गए, चारों तरफ ये सीन दिखते हैं आपको। तो क्या कलयुग खराब युग है? तो करभाजन जी कहते हैं 11:5-38 में कि कलयुग बहुत श्रेष्ठ युग है, इसकी कामना सतयुग में रहने वाले, द्वापर में रहने वाले, त्रेता में रहने वाले भी यही कामना करते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो। क्यों कलयुग में हो? क्योंकि कलयुग में थोड़ी सी भक्ति करने से ही भगवान का धाम मिल जाता है। तो कृतादिषु प्रजा राजन कलौ विच्छन्ति संभवम्। कृतादिषु, कृत मतलब है सतयुग, सतयुग त्रेता द्वापर, इन तीनों युगों में मनुष्य ये मनाया करते हैं, सुनते हैं कि कलयुग में आसानी से कीर्तन करके सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हाय रे, जिनके जन्म कलयुग में मिला हुआ है जिनको, वे कीर्तन नहीं कर रहे हैं। हम जाते हैं बाहर, अरे करो करो, हम भागवत करते हैं और अंत में हम ये बोलते हैं कि आज कौन कितनी माला लेगा, प्रण करो हमारे साथ में, तो मुश्किल से कोई 5-7 आदमी 150 आदमी में से खड़े होते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं। ध्यान रखिए कि एक बार भजन नहीं करने पर तो बहुत दुर्गति होगी, और बाद में कभी सतयुग में जन्म मिलेगा तो कमर टूट जाएगी साधन करते 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 करते, लाख वर्ष तक आयु होती है उसमें ध्यान करते करते कमर टूट जाएगी। और यहां पे तो एक क्षण का कृष्ण का भजन कर लो कलयुग में पार हो जाओगे, तो यह है चांस चला जाएगा। कहते हैं कृतादिषु प्रजा राजन कलौ विच्छन्ति संभवम्। संभवम का अर्थ है जन्म। सतयुग आदि की प्रजा, सतयुग आदि के मनुष्य चाहते हैं कि कलयुग में जन्म होगा, अरे किस लिए? बोलो कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। हम कलयुग में नारायण परायण हो जाएंगे, कृष्ण के भक्त हो जाएंगे, भगवान का भक्त बनेंगे, बहुत शीघ्र हो जाएंगे। खाली 16 माला का जाप करने से ही हम भक्त हो जाते हैं। और कलयुग में नारायण परायण क्या होना है? बोले हरे कृष्ण का उच्चारण, यही हमारा नारायण परायण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग इतना डिग्रेडेड युग है, इतना गिरा हुआ युग है कि आप देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल तिलक लगा करके बाहर जाता है तो लोग कहते हैं पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। आजकल तिलक भी लोग नहीं लगाते हैं, तो तिलक लगाने वाले भी कम हो गए हैं, और थोड़ा सा यदि शिखा रख ले तो और भी पंडित जी उसको कहते हैं, पंडित जी महाराज आ गए, पंडित जी महाराज आ गए। और थोड़ा सा यदि वो जाप करने लग जाए, थोड़ा सा कुछ पढ़ने लग जाए, भागवत आदि, भगवत गीता आदि, थोड़ा सा श्लोक बोल दे तो उसको कहते हैं महाभागवत, महाभागवत। क्योंकि भागवत का अर्थ भी वे जानते नहीं है कि महाभागवत किसको कहते हैं। एक बार की घटना हमारे गुरु महाराज राधा गोविंद महाराज जी सुनाते हैं कि महाराज श्री के साथ एक लड़का गया था अमेरिकन कंसुलेट में वीजा लेने के लिए। बिहार का लड़का था, महाराज श्री के साथ गया था, तो एक स्त्री उस एम्बेसी में सब कागज देख रही थी। तो उस लड़के को पहले से महाराज श्री ने श्लोक सिखाया था कि यदि वो पूछेगी स्त्री कि संस्कृत जानते हैं तो कहना कि हाँ, तो कुछ श्लोक बोल सकते हैं। तो महाराज श्री ने कह दिया था कि बोलना हिचकना मत, याद कर लो। बोले नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, नमो महावद अन्याय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, इस प्रकार 3-4 श्लोक उनको रटा दिया। तो सचमुच संजोग से वस्त्री पूछ ली कि आप क्यों जा रहे हैं अमेरिका? बोले पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो बोले आप वेद जानते हैं? बोले हाँ बिल्कुल जानता हूं। तो वेद का कोई श्लोक बोलिए। तो वो तो धड़ाधड़ बोल दिया नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नाम ने, और दो श्लोक बोलते बोलते दो ही श्लोक बोला केवल। स्त्री ने कह दिया ठीक है ऑल राइट और इसके बाद 5 साल का वीजा दे दिया। तो बोलो ये है वेद। इतना पतित हो गए हम ये जानते नहीं कि वेद के श्लोक क्या हैं, वेद क्या है। पर इतना गिरा हुआ ये युग है, इसमें एक गुण अद्भुत है। कलोर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुण है, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगह परम ब्रजेत। 12:3-51 जब भागवत का उपसंहार कर रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भले ही कलयुग एकदम गिरा हुआ युग है, लेकिन हे राजन इसमें एक बहुत महान गुण है कि केवल कृष्ण के कीर्तन मात्र से मुक्त संग है, उसका कल्याण हो जाएगा। कृष्ण के केवल कीर्तन मात्र से व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम में चला जाता है। तो यह एक अद्भुत गुण है। तो कलयुग के सारे दोषों को एक पर्दे पर यदि रखा जाए और इस गुण को यदि एक तरफ रखा जाए तो यह गरिष्ठ होगा, यह भारी होगा। नाम गुण का उच्चारण, सारे अवगुण हल्के हो जाएंगे, इतना बड़ा गुण है। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अस्ति ही एको महान गुण है। महान का अर्थ है कि उन सारे दोषों से यह बड़ा है। कलयुग के दोष आपने देखा अजामिल के प्रकरण में, अभी जो 4 श्लोक मैंने बताए। तो कलेर दोष निधे राजन, निधे क्यों कर रहे हैं? निधे कहते हैं समुद्र को, खान समुद्र। बोले ये समुद्र में जैसे जल भरा रहता है वैसे कलयुग में दोष भरे ही रहते हैं, दोष ही दोष है। लेकिन एक गुण ऐसा है कि सारे दोष इसके माफ कर दिए जाते हैं, उन पर विचार नहीं किया जाता है। तो सारग्राही वैष्णव जन भक्त जन देखते हैं कि कलयुग के इस गुण को, तो इसीलिए कलयुग को वे पसंद करते हैं। तो इसीलिए वे कहते हैं कि कृतादिशु स्वर्ग, मतलब सतयुग द्वापर ये कृतादिशु राजन कलो इच्छन्ति संभवम कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। करभाजन जी कहते हैं 11:5-42 में नव योगेंद्रों में से एक है कि सुपाद मूलम भजता प्रियस्य, जो कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करके उनका भजन करता है तो क्या होता है? बोले प्रियस्य, कृष्ण उसको अपना मानते हैं, प्रिय है, वह कृष्ण का प्रिय हो जाता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमल का भजन करता है तो उसको भगवान अपना प्रिय मानने लगते हैं, मेरा है ये भाव हो जाता है भगवान का भी। एक बार जो भगवान का नामोच्चारण करता है तो उसको कृष्ण अपना मानना चालू कर देते हैं। जैसे अजामिल कोई नियम बनाकर नामोच्चारण नहीं कर रहा था, वो बार बार नारायण को बुला रहा था तो नारायण नारायण उसके मुख से आ रहा था, जो भी कर रहा था अपने बेटे के लिए कर रहा था नारायण नारायण। लेकिन भगवान की ऐसी मति हो गई कि ये मेरा है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब तो वे दूतों को प्रेरित किए, भेजे कि जाओ बचाओ। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वह भगवान का प्रिय हो जाता है। तो भगवान देखते हैं कि स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य, मेरा प्रिय है और मेरे भजन में यह लगा हुआ है। तक्त अन्य अनन्य भावस्य, तक्त अन्य भावस्य, अन्य सब भाव को छोड़ करके ये मेरे पर आश्रित है, न वह पिता का न माँ का कोई आश्रित है, न कोई अन्य देवता का आश्रित है, केवल मेरी भक्ति कर रहा है। तो अन्य भरोसा छोड़ करके मेरी रक्षा केवल कृष्ण करेंगे। परम सुंदर श्री कृष्ण जो परम ईश्वर हैं, वे उसके हृदय में रहते ही हैं। तो वे विकर्म यंचो पथितम कथनचित कथनचित, यदि कोई विकर्म माने पाप उससे हो भी जाता है, क्योंकि माया राज्य में है, एक तो विकर्म होता नहीं है, लेकिन कथनचित कभी कभी समझ लो कभी हो गया किसी तरह कुसंग में पड़ करके, या देवयोग से पूर्व संस्कारवश, बिल्व मंगे ठाकुर का संस्कारवश हुआ पूर्व जन्म का, किसी तरह कोई गलती हो भी जाती है तो धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट है, भगवान हृदय में रहते ही हैं और वे सब पाप नष्ट कर देते हैं। यदि कृष्ण का भजन ठीक से किया जाए, उनके शरण में हुआ जाए, तो कभी भी एक पाप भक्त कर नहीं सकता है, लेकिन यदि कभी पाप हो भी गया तो भगवान उसके पाप को समाप्त कर देते हैं। एक तो पाप होने ही नहीं देते हैं, और कदाचित हुआ तो पाप का फल उसी समय समाप्त हो जाता है, उसे भोगना नहीं पड़ता है। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः है, उसी समय धृणोति सर्वम, सारे पाप नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हृदय सन्निविष्ट है, भगवान हृदय में रहते हैं, वहीं पर रहते हैं और जानते हैं कि यह उस भक्त के मन को कि बेचारा मेरी शरण में है, लेकिन कुछ स्वभाव की कमजोरी से कुछ कर दिया, हो गया कभी कभी, चाहे परस्त्री गमन हो, चाहे वेश्यागमन हो, चाहे और कुछ पाप हो गया है, कुछ भी पाप हो गया है, ये ध्यान रखना चाहिए कि भक्त रेगुलर पाप नहीं करता है। ऐसा नहीं कि बहाना बना ले कि मैं तो एक भक्त हूं और इसके बाद कुछ भी गलती करूंगा तो भगवान मुझे माफ कर देंगे, ऐसा नहीं है, या नाम जप कर रहा हूं तो नाम मिटा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कथनचित अवश्य अवस्था में या मूर्ख स्वभाववश या पूर्व स्वभाववश कहीं कुसंग में पढ़कर के, संग बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए, कहीं कुसंग में पढ़कर के किसी तरह से यदि कोई गलती हो भी गई है तो उसको भगवान नष्ट कर देते हैं, इस तरह से भक्त सुखी हो जाता है। देहोती माता जी कहती हैं 4:33-7, नाम का क्या प्रभाव होता है, क्योंकि इस प्रकरण में नाम का ही प्रभाव है, अजामिल नारायण का नाम लिया इसलिए वह तर गया। बोले अहो बत स्वपचोतो गरियान यंजी हाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहुवु शश्नुरारिया ब्रह्मान चोर नाम गृणंती ये ते। 4:33-7, अहो बत वह आदमी धन्य है, स्वपचोतो चंडाल भी है तो वह व्यक्ति धन्य है, गरियान वह पूज्य है, कौन यत जिह्वाग्रे जिसके जीवा के अग्र भाग में वर्तते नाम तुभ्यम आपका नाम आता है, जिसके जीवा के अग्र भाग पर कृष्ण आ गया, आपका नाम आ गया, तो वह भले ही चंडाल है, कुत्ता खाने वाला है, लेकिन वह धन्य है, वह पूजनीय है। और तेपुस तपस्ते जुहु सस्नुर आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती ये ते, गृणंती जो नित्य आपका नाम लेते हैं उन्होंने तो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तेपु तपस्या की है, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तप किया है, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जुहुवु अग्नि संस्कार किया है, यज्ञ किए हैं, सस्नु करोड़ों करोड़ों वर्षों तक पवित्र नदियों का स्नान किया है, आर्या कवि करोड़ों करोड़ों वर्षों तक आर्यों का आचरण किया है, आर्यों का आचरण सद आचरण, ब्रह्मा अनुचुहु वेदों का उसने अध्ययन किया है, तब कहीं जाकर के नाम गृणंती ये ते वह भगवान का नाम ले रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये श्लोक पुष्टि करता कि भगवान के पवित्र नाम को बोलने की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं होती है, अपितु जप करने वाला पहले कई कई यज्ञ कर चुका है, अनुष्ठान कर चुका है और वेदों का अध्ययन कर चुका है, सदाचार कर चुका है, तब जाकर के उसके जीवा पर अग्र ये भगवान का नाम आया है। तो वह कहते हैं प्रभुपाद जी कि जो अपनी जीव के अग्र भाग पर केवल नाम जाप करते हैं वे धन्य हैं। मनुष्य को पवित्र का नाम का जप भी नहीं करना होता है, वो तो करना है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर यदि नहीं भी कर रहा है तो केवल उसके अग्र भाग पर जीवा के कृष्ण का नाम आ गया है, तो केवल एक नाम चाहे कृष्ण कोई भी आ गया उसका कल्याण हो जाएगा। कभी कभी बाहर के लोग कहते हैं अरे तुम हरे कृष्णा वाले क्या, तुम लोग खाली हरे कृष्णा करते रहते हो, तुम्हारे मन तो लगता नहीं है भगवान में, मन नहीं लगता है। यहां पे देखो मन लगने की बात नहीं कही है इस श्लोक में, यहां इस श्लोक में कहा गया कि जीवाग्रह जीवा के अग्र भाग पर केवल कृष्ण का नाम आ गया वह सफिशियंट है। तो यदि एक बार भी वह जप करता है तो समझिए कि उसने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। 2400 घंटे जो जप करता रहता है उसका तो कहना ही क्या है, बोलना ही क्या है, चाहे मन लगे कि नहीं लगे उसका तो कहना ही क्या है। और यहां विशेष रूप से किसका जप करना चाहिए तो यहां पे इस श्लोक में आया तुभ्यम, केवल कृष्ण का जप करना चाहिए। प्रभात जी कहते हैं कोई देवता का कोई देवी का या अन्य किसी मायावादी जैसे कहते हैं सब चीज एक ही है, किसी का भी करो सब एक ही है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हरिदास ठाकुर, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वे मुस्लिम समुदाय में थे, उनके यहाँ यज्ञ, ये आर्यों का आचरण, ये सब नहीं होता है, लेकिन वे मुसलमान होते हुए उनको नामाचार्य की उपाधि दी गई भगवान चैतन्य महाप्रभु ने और अद्वैत महाप्रभु ने, अद्वैत प्रभु ने। क्यों? बोले उसने पहले ही करोड़ों करोड़ों वर्षों तक ये सब किया है, तब जाकर के वह नाम जप कर रहा है। इसलिए यह कोई साधारण बात नहीं है कि किसी के जीवा पर, अग्रभाग पर कृष्ण का नाम आया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनेक स्थलों पर ऐसा वैदिक कथन मिलता है कि जो कोई भगवत नाम का जप करता है या जो कोई भगवत नाम का श्रवण भी करता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है, भले ही वह किसी चंडाल के घर उत्पन्न हो, वह भवपाश से छूट जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये तो जीवा के अग्रभाग पर कृष्ण का नाम लिया उसका श्लोक था। अभी आपको एक श्लोक बताते हैं जिसमें जीवा के अग्रभाग पर भी आपने नाम नहीं दिया है, आपने केवल संकल्प कर लिया है कि मैं कृष्ण का नाम लूंगा, मैं आज से एक माला जपूंगा। ये पद्यावली का श्लोक है, रूप गोस्वामी ने इसको संकलित किया है, किसी भक्त की रचना है। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा समोहमा लंबते सातान कम नख रंजनीम कलती श्री चित्र गुप्त कृति सानंदम मधुपर्क विदो संभ्रति वेदा करो तुद्यमम वक्तुम नाम्नि तवे स्वरामि लसते ब्रूभय किम अन्यत परम। वेपन्ते, जिसने केवल कृष्ण के नाम लेने का संकल्प किया है कि आज से मैं एक माला जपूंगा, संकल्प किया है उसने, तो उसके वेपन्ते कंपान मान हो लाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। कौन? दुरितानि, पाप उसके कांपने लगते हैं, कांपने की कि अब हम कहां रहेंगे, इतने दिन तो हम इसके शरीर का आश्रय में रहे, लेकिन अब तो यह भगवान का नाम जपने जा रहा है, तो पाप कर्ण कांपने लगते हैं कि अब हम कहां जाएंगे। और सम्मोहमा लंबते, लंबते माने दूर होते हैं, भागते हैं। कौन? मोह। मोह क्या है? ये प्रसंगम, परिवार की आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, ये सम्मोहम, मेरा, अहम ममेति, ये मेरा है, ये मैं हूं, यह सम्मोहम। ये सम्मोह उसका दूर हो जाता है, लंबते वह उसका दूर हो जाता है, किसका? जो केवल संकल्प कर रहा है कि मैं आज से कृष्ण का नाम जपूंगा। और सातंकम नख रंजनीम कलती श्री चित्रगुप्त कृति, चित्रगुप्त जी जो सबके ये हेड क्लर्क हैं यमराज जी के, और जो सबके लेखा जोखा पापों का रखते हैं, रजिस्टर बना के रखते हैं, वे सोचते हैं कि अब ये नाम लेने वाला है तो वो रजिस्टर मंगाते हैं जिसमें इस पापी का नाम है, मंगा करके बोलते हैं कि जब इसको काट दो, अब इसमें इसका नाम नहीं रहेगा क्योंकि अब ये नाम लेने वाला है, तो उसका नाम पापियों के दृष्टि से वे काट देते हैं। और सानंदम मधुपर्क विभो संभ्रति बेधा माने ब्रह्मा जी करो तुद्यमम, ब्रह्मा जी ये सोचते हैं कि अब तो ये नाम लेने वाला है तो ये निश्चित रूप से बैकुंठ जाएगा, तो बैकुंठ जाएगा तो मेरे धाम से होके जाएगा, ब्रह्मलोक होकर के जाएगा, तो वे सब तैयारी जुटाते हैं। क्या क्या तैयारी करते हैं? मधुपर्क, शहद, जल, चावर, छत्र, ये सब जुटाते हैं उसका स्वागत करने के लिए कि अब ये भगवान का नाम लेने वाला है, तो उसके स्वागत की तैयारी में वे लग जाते हैं। तो नाम लेने की जो इच्छा किया है उसके स्वागत की तैयारी करने की, तो फिर जो नाम ले लेगा उसका क्या होगा? वक्तुम नाम्नि तवे स्वरामि लसते ब्रूभय किम अन्यत परम। तो हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आपका नाम जपने की, लेने की जिसकी अभिलाषा होती है उसके लिए ये सभी होता है, तो फिर नाम जपने वाले के बारे में मैं क्या कहूं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। پانچ منٹ کا ٹائم ہے, بلو منگل ٹھاکر کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہیں گے. بلو منگل ٹھاکر کا الیکھ اپنے چیتنیہ چرتامرت میں بھی کرشن داس کبیراج گوسوامی نے کیا ہے. یہ ایک ساؤتھ کے کرشن وینوا ندی کے تیر پر رہتے تھے اور کلین براہمن ونش میں تھے یہ, اور قریب 1213 عیسوی میں یہ ہوئے تھے. آج 2000 عیسوی چل رہا ہے, 1200 مانے 800 ورش پہلے یہ ہوئے تھے. تو یہ کرشن وینوا ندی کے ایک سائڈ میں یہ رہتے تھے اور دوسری سائڈ میں ایک ویشیا رہتی تھی جس کا نام تھا چنتامنی. ایک بار ان کو اس دوسری سائڈ میں جانے کا سنیوگ پراپت ہوا تو انہوں نے اس کے نرتیہ کو اور گان کو کوئی کاریکرم میں سنا. تو سنا تو پورو جنم کی درواسنا کے وش یہ اس کو دیکھتے ہی مگدھ ہو گئے, اور چنتامنی بھی ان کے اوپر, کیونکہ یہ عجیب سوندریوان تھے, برہمتیج تھا, براہمن تھے, تو یہ بھی چنتامنی بھی ان کے اوپر آسکت ہو گئی. اب بلو منگل ٹھاکر اس ویشیا کے گھر میں رہنے لگ گئے, اپنا گھر بار چھوڑ دیا. پتا جی اتی دکھت ہوئے, وہ مر گئے. پتیورتا استری براہمنی بیچاری اکیلی رہتی تھی, دکھی تھی. ایک دن شرادھ آیا پتا کا, تو براہمنی نے سوچا کہ میں کم سے کم آج کے دن پتی دیو کو اس سے بھیک مانگ کر کے لے آؤں چنتامنی سے. تو وہ چنتامنی کے گھر میں گئی, جا کر کے ان کو پرارتھنا کی کہ آپ آج کے دن ہمارے کو یہ براہمن جی سپرد کر دیجئے. تو اس کو پربھاوت ہوئی, اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم. دن بھر بیت گیا, راتری کے سمے کامدیو نے اس کو وچلت کر دیا بل منگل ٹھاکر کو, اور وہ چنتامنی کے گھر کے لیے چل دیا. پیچھے پیچھے براہمنی چلی کہ اس کو روکوں کیسے ہی, لیکن پتا نہیں چلا وہ کس روٹ سے چلے گئے. تو براہمنی جب وہ ندی کے دوسرے تٹ پر گئی جہاں پر ویگ بہت تھا, جا کر کے سوچتی اب میرا جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اس نے اس ندی میں کود کر کے آتم ہتیا کر لی. تو اس کا شو وہاں پہ تیرنے لگ گیا. یہاں پہ بلو منگل ٹھاکر دوسرے چھور پر گیا, مانے اوپر سے نیچے کے چھور پر گیا, جا کر کے دیکھا کہ ندی کا بڑا پرواہ ہے تو کیسے جاؤں گا, پر اس کو جانا تو ہے ہی. بولے نہیں جاؤں گا تو ایسا کرتا ہوں میں تو آج اس میں ڈوب جاتا ہوں چنتامنی کا نام لے کر کے. تو چنتامنی کا نام لے کر کے وہ اس کے اندر ڈبکی مار دیا. چنتامنی کرشن کا بھی نام ہے. بھگوان سوچے کہ میرا نام لے کر کے ڈبکی مار رہا ہے, میں اس کو بچا لوں, جبکہ وہ لیا تھا ویشیا کا نام. یہی نامابھاس, یہ جو اجامل کا نامابھاس, بچا لوں. تو ادھر سے وہ جو شو آ رہا تھا اس نے دیکھا چنتامنی نے میرے لیے ایک ناؤ بھیجی ہے, اس ناؤ پر میں چڑھ کر کے چلا جاؤں, دیکھو میرا کتنا خیال رکھتی ہے. وہ اس شو کے اوپر چڑھ کر کے وہ دوسرے پاس چلا گیا. جا کر کے دیکھا چنتامنی کا گھر بند تھا, تو اوپر سے ایک اس کو ایسا لگا کہ رسی لٹک رہی ہے چھت پر سے, تو اس کو وہ پکڑ کر کے اور چھت پہ چلا گیا, اور وہاں سے جب وہ جمپ مارنے گیا تو ایک گندے نالے میں وہ گر گیا, اور بہت زور سے آواز ہوئی. آواز ہوئی تو چنتامنی نے اپنی داسی کو بولا کہ جا کر کے دیکھو یہ کس کی آواز ہے. تو بولے کہ یہ منگل آیا ہے, بلو منگل ٹھاکر منگل کہتے تھے, منگل آیا ہے, دیکھی کیا دردشا اس کی, کیچڑ میں سن تیز اس کا سماپت. اس نے اس کو نہانے کا دیا, اچھے کپڑے دیے, اور پھر بولی کہ تم آئے کیسے اور تم یہاں چڑھے کیسے. بولے تمہیں نے تو میرے کو ناؤ بھیجی تھی اور تمہیں نے میرے کو یہ رسا لٹکا کے دیا تھا. وہ باہر جا کے دیکھی تو ایک بہت زہریلا سرپ لٹک رہا تھا, اس کو پکڑ کر کے وہ اوپر آئے تھے. تو بولے نوکا پٹھوائی دوار لاؤ پلٹکائی, نوکا تم نے بھیجا, دوار نار مل لگ, تم نے رسی لٹکائی میرے من بھائی. میرے کو اچھا لگا کہ دیکھو میری پریا کتنا میرا دھیان رکھتی ہے. یہ دیکھا جب اس نے تو بولے نوکا بھی ایسی ہی ہوگی کوئی تو بھی. وہ اس کو بڑی دھکاری کہ جیسو من میرے ہاڑ چام سو لگایو, جس پرکار تم نے تمہارا من میرے اس ہڈی اور چرم کے شریر میں لگایا ہے, تیسو شام سو لگاؤ تو پہ جانی یہ سایانی کے, ویسا تم یدی کرشن میں تمہارا من لگاتے تو میں تم کو سمجھتی کہ تم بدھیمان ہو. میں تو بھائی بھور सवेरा होते ही भजो युगल किशोर, मैं तो यहां से चली जाऊंगी, कृष्ण का भजन करूंगी, अब तेरी तू ही जाने, चाहे करी मन माने के, अब तुमको जो करना है करो, तुम यहां रहो और चाहे भगवान का भजन करो, तुमको जो करना हो करो। उसको उस धिक्कार से उसको विरक्ति हो गई बिल मंगल ठाकुर को, और वे भी सुबह होते हुए तो चल दी, और ये भी फिर वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन की ओर जब चले तो रास्ते में एक सरोवर आया, उस सरोवर पर वे अपने एक कुटिया एक झाड़ के नीचे ही भजन करने लगे, और कृष्ण का बहुत अच्छा भजन करने लगे, और इतने विरक्त हो गए कि वह किसी स्त्री की तरफ देखते नहीं थे, आंखें बंद करके रखते थे। तो गांव के लोगों ने सोचा बड़ा अच्छा सन्यासी है, तो उसको केला फ्रूट्स और सब्जी वगैरह या जो भी प्रसाद है उसको देने लग गए। एक दिन देखो कैसा पतित होता है, वो चल दिया है सन्यासी बनने के लिए, लेकिन कैसा पतित होता है कि एक दिन एक उस गांव की स्त्री आई उस सरोवर पर पानी लेने के लिए, तो उसने स्नान किया, स्नान करके घड़े को अपने सिर पर रखा और चल दी। तो इसका मन फिर मेला हो गया, उसकी सुंदरता को देख करके, उसके यौवन को देख करके फिर उसका मन मलिन हो गया, जैसे अजामिल हुआ था। यहां तो खैर सत्य ये बहुत अच्छी स्त्री है, तो देख करके मलिन हो गया, तो वो उसके पीछे पीछे चला, स्त्री अपने घर में चली गई, ये बाहर बैठ गया। पति जब आया बोले वो सरोवर वाले सन्यासी बाहर बैठा है, तो उसने समझाया कि देखो ये बात है, वो मेरे पीछे आया है, उसकी कामना बुरी है। पति ने कहा कि ऐसा करो, तुम 16 श्रृंगार करो और आज उस साधु के पास जाओ, उसकी कामना पूर्ण करो। पति ने के आज्ञा से उसने श्रृंगार किया और उसके पास वो गई। जब बिल मंगल ठाकुर ने उसको श्रृंगार किए आया कि मेरे संतोष के लिए मुर को आई है ये, उसको फिर वैराग्य हो गया, और वैराग्य होकर उसने कहा कि तुम दो सुई लेकर के आओ। वो दो सुई लेकर के आई, उसने दोनों सुई से झट से अपने आंख खत्म कर दिया, चुभो करके उसकी आंखें समाप्त हो गई। जब समाप्त हो गई तो फिर वह चला वापस वृंदावन की तरफ, भजन करते करते जा रहा था, अंतर्दृष्टि खुली थी, बाह्य दृष्टि समाप्त हो गई थी। गया तो दो दिन के चलते चलते भूखा प्यासा कृष्ण देखे कि ये तो भूखा प्यासा है, तो आए कृष्ण उसके लिए प्रसाद लेकर के आए, उसको खिलाया पिलाया और फिर उसको साथ में चले, बोले देखो शाम हो गई है, चल तुम्हारा हाथ पकड़ मेरा और मैं तुमको किसी झाड़ के नीचे बिठा देता हूं। उसने हाथ पकड़ा कृष्ण का, हाथ पकड़ कर एक झाड़ के नीचे बिठा दिया और फिर अपना हाथ छोड़ा करके जाने लग गए। अंधे की पकड़ बड़ी होती है, कड़ी होती है, वो छोड़ता नहीं जल्दी से, तो वे जब छुड़ाने लग गए बोले नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, वे समझ गए कृष्ण आया है। बोले बांह छुड़ाए जा, कृष्ण ने छुड़ा दिया बांह, तो बोले बांह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, अरे तुम मेरे अपने बांह छुड़ा करके जान रहे हो क्योंकि मैं कमजोर हूं, इसलिए हृदय से जब जाओगे सबल बदोगो तो ही, जब मेरे हृदय से तुम निकलोगे तब देखूंगा कि वास्तव में तुम बलवान हो, ऐसे मैं तुमको बलवान नहीं मानूंगा। चले गए कृष्ण और जाकर के रोज वे उनके लिए प्रसाद लाते थे और उनको खीर का प्रसाद लाते थे और उनको देते थे। तो उन्होंने फिर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण के कर्णों के लिए अमृत, कृष्ण के कानों के लिए अमृत। तो ये जब भी इनके पदों को वे गाते थे वृंदावन में गलियों में, तो कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते थे उनका भजन सुनने के लिए, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा कृष्ण कर्णामृत। एक भजन एक पद केवल उसका हम लेंगे कि चिकुरम बहलम बिरलम भ्रमरम नदुलम वचनम विपुलम नयनम अधरम मधुरम बदनम मधुरम चपलम चरितम चकदान विभो। ये मधुरम मधुरम इन्हीं का है, तो मधुरम मधुरम हम लोग आते हैं वो इन्हीं का है। तो चिकरम बहुलम, कब वह दिन आएगा जब बहुलम माने मैं आपके स्निग्ध घने केशों को संवारूंगा, बिरलम भ्रमरम और कब वह दिन आएगा जब भ्रमर के भांति लटकती हुई आपकी अलकावली कब मैं संवार दूंगी, और मृदुलम वचनम कब वह दिन आएगा जब मैं आपके मृदुल वचन को सुनूंगा, विपुलम नयनम कब वह दिन आएगा जब मैं आपके विपुल आंखों को देखूंगा, अधरम मधुरम کب وہ دن آئے گا جب آپ کے بانسری بجاتے ہوئے ادھرامرت کا میں پان کروں گا، مدھورم چپلم کب وہ دن آئے گا جب آپ کی مدھر مدھر باتوں کو میں سنوں گا، چپلم چریتم کب وہ دن آئے گا جب میں آپ کی لیلاؤں کا آسوادن کروں گا، ہے کرشن کب وہ دن آئے گا۔ تو اس پرکار سے یہ ان کی رچنائیں ہیں۔ ہرے کرشنا۔ کسی کا کوئی پرشن؟ ہاں بولیے، مائک نہیں ہے کیا؟ ہاں کوئی بات نہیں، بولیے۔ شروع میں آپ کیا تھے؟
شروع میں میں کیا تھا؟
آپ 84 لاکھ میں گھوم رہے تھے، اب کیا تھے یہ تو معلوم نہیں۔
شروع میں کیا تھا؟
شروع میں نا،
واٹ واز آئی ان دا ویری بگننگ،
بگننگ نا، وہی بول رہا ہوں آپ کو کہ آپ 84 لاکھ میں گھوم رہے تھے، اب آپ کس یونی میں تھے یہ نہیں معلوم ہے، کیٹ یونی میں تھے، پتنگا یونی میں تھے، یا منشی یونی میں تھے، دیوتا یونی میں تھے، پتا نہیں ہے۔ لیکن جو یدی آپ بھجن میں نہیں ہیں، بھکتی میں نہیں ہیں کرشن کی، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 84 لاکھ میں گھومتے گھومتے آپ آئے ہیں، آپ کیٹ پتنگ یونی میں ہی تھے، منش یونی اب آپ کو ملی ہے بھجن کرنے کے لیے۔
نہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا 84 لاکھ یونی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ویری بگننگ، دا اسٹارٹ۔
ویری بگننگ اس کا ہے ہی نہیں نا، 84 لاکھ گھومتے رہتا ہے،
کبھی تو اسٹارٹ ہوگا نا،
اسٹارٹ اس کا ہے ہی نہیں۔
84 لاکھ یونی مطلب کچھ تو اسٹارٹ ہوگا نا۔ سب سے پہلے، سب سے شروع میں میں کیا تھا؟
اس کا سٹارٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ جیو جب پرلے بھی ہو جاتا ہے تو بھی وہ
کس چیز سے بنا؟
جیو کرشن کا انش ہے، بنتا نہیں ہے
وہ، وہی
اس کا نہ جنم ہوتا ہے نہ مرتیو ہوتی ہے۔
یہ سمست سنسار جو ہے وہ بھگوان کرشن کی اچھا ماتر ہے، اور یہ جو دوند چاروں طرف ہمارے ہیں، رات دن، سکھ دکھ، پاپ پن، یہ سب دوند جو ہے وہ اگر نہیں ہو تو سنسار ہی نشٹ ہو جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے، سب سے شروع میں کیا تھے، اور میں جو سب سے شروع میں تھا تو میں اس استھتی میں کیسے آ گیا؟
پر آپ کو اس سے کیا لین دینا، یہ بتائیے کہ آپ کیا تھے، آپ کیا ہونا چاہتے ہیں، آپ کو کیا گتی ہونی چاہیے، اس پہ دھیان دو نا۔ جب کیا تھے چھوڑ دو نا، کچھ بھی تھے آپ۔
نہیں نہیں، مجھے تو اس پرشن کا ہی اتر چاہیے کہ سب سے پہلے، سب سے شروع میں کیا تھا۔
بھائی بتا تو دیا آپ کو، باقی آپ سنتوشٹ نہیں ہے تو۔
نہیں، آپ نے بولا کہ یہ تو گول چکر ہے۔
ہاں، اس کا کوئی انت نہیں ہے، شروع تھا ہی نہیں نہ انت ہے، سب بن کے آئے ہیں۔
سب نہیں، کوئی تو اسٹارٹ ہوگا، ایسے تو اگر ایسے ہی چکر ہے تو کبھی مکتی نہیں ہو سکتی۔
ہو سکتی ہے، وہی تو بتایا۔
نہیں تو مکتی ہو سکتی تو اسٹارٹ بھی ہوگا نا، اگر
پھر نہیں ہوگی مکتی، ہوگی تو اسٹارٹ نہیں ہوگا۔
نہیں نہیں، اگر اینڈ ہے تو دیر آلویز بھی۔
نہیں 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 نہیں، یہی تو آپ کا، آپ نے پڑھا سنا کیا پھر اتنی دیر؟ آپ کبھی ٹائم پہ آ گئے تھے آپ؟
مکتی کس چیز سے؟ مکتی کیا؟
کرشن کے بھجن سے۔ آپ نے کیا سنا؟
لیکن مکتی کا ارتھ کیا آپ؟
کرشن کے دھام جانا، یہی مکتی ہے، اور کچھ نہیں ہے مکتی، کرشن کے دھام جانا، اس سنسار کو چھوڑ کے 84 لاکھ کا جنم ختم کرنا، واپس جنم نہیں ہو، واپس مرتیو نہیں ہو، یہی مکتی ہے۔
لیکن آپ نے ابھی بولا کہ یہ بار بار ہوتا رہتا ہے 84 لاکھ، تو
کیونکہ آپ بھجن نہیں کرتے اس لیے ہوتا ہے۔
نہیں نہیں، تو جب بار بار ہوتا رہتا ہے تو اس کی کیا گارنٹی کہ پھر سے نہیں ہوگا؟
خیر ٹھیک ہے، چھوڑیے ابھی اس کو۔ اور کوئی، کسی کا اور کسی کا کوئی پرشن ہے؟ گرنتھ راج شریمد بھاگوتم کی جائے۔